हाँ, ये फ्रांसीसी कंपनी है एल्स्टॉम, जिसकी मदद से भारत ने रेल इंजन बनाया है। एल्स्टॉम ने भारत सरकार के हुए करार के तहत मधेपुरा रेल इंजन कारखाने में ये पहला इंजन तैयार किया है, और इसकी खासियत ये है कि यह 12,000 हॉर्स पावर का है, HP का है। जो आम तौर पर भारत में इंजन होता है, रेल इंजन, वो 6,000 HP का होता है, तो इसकी जो क्षमता है वो दोगुनी है जो भारत में अभी इंजन चलता है। इसके बाद रेल की स्पीड है भारत में वो बढ़ने की उम्मीद है, और खास तौर पर माल ढुलाई के लिए जो हमारे लोकोमोटिव यूज होते हैं उस लिहाज से ये बहुत तेज है। इससे एक बड़ा फायदा ये होगा कि माल ढुलाई में जो बहुत ज्यादा वक्त लगता है देश के दूर दराज इलाकों तक माल पहुंचाने में, वो उसमें बहुत भारी कटौती होगी। और इसके अलावा अगर यात्री ट्रेन में इसका इस्तेमाल किया जाए तो वहां भी हम बढ़ी हुई स्पीड पर देख पाएंगे भारतीय रेल को। इसकी क्षमता 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और ये किसी भी वेदर, किसी भी मौसम को सहने में सक्षम है।
आलोक जी, ये बताइए कि ये इलेक्ट्रिक जो है इंजन है ये?
हाँ, ये इलेक्ट्रिक इंजन है। एक और जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, वो बिहार में ही मढ़ौरा है सिवान में, वहाँ मेक इन इंडिया के तहत रेल इंजन बना रही है, लेकिन वो डीजल इंजन बना रही है, और ये इलेक्ट्रिक इंजन है। पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं, उनका फोकस इसी बात पर है कि धीरे धीरे डीजल इंजन को फेज आउट किया जाए और इलेक्ट्रिक इंजन पर भरोसा किया जाए। इसीलिए जो तमाम ऐसे रेलवे ट्रैक जहां विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, वहां तेज गति से इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, ताकि इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इससे ऊर्जा की ही खपत कम होती है, और साथ साथ ये क्लीन एनर्जी है जिससे पर्यावरण को भी मदद पहुंचती है, और पर्यावरण को ठीक रखने में, प्रदूषण रोकने में ये कारगर साबित होती है इंजन। पलवी,
जी, और ये बताइए आलोक जी कि ये इंजन भारत में बना है, मतलब ये क्या मेक इन इंडिया कैंपेन अभियान के तहत बना है?
हाँ, ये नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो विदेशी निवेश होता है उसमें एक नई चीज जोड़ी जो मेक इन इंडिया के नाम से मशहूर हुई, और एक बहुत चालाकी से किया गया फैसला था, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो विदेशी कंपनियां तकनीकी हस्तांतरण यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से परहेज करती थी। उनको लगता था कि अगर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे तो भारत की जो कंपनियां हैं वो खुद वैसी तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये साफ कहा कि देखिए, हमारे पास बड़ा बाजार है, अगर आप इस बाजार का दोहन करना चाहते हैं और पैसे बनाना चाहते हैं तो ठीक है, वेलकम, आप आइए, लेकिन आपको इसके एवज में अपनी तकनीक देनी होगी। और ये जो इंजन बना है ये पहला ऐसा सबूत है जिससे ये अंदाजा लगा सकती हैं आप कि आने वाले दिनों में भारतीय कंपनियों के पास भी ये तकनीक होगी, क्योंकि एल्स्टॉम ने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, और ये पहला इंजन है। इसके बाद इसी कारखाने से 35 इंजन और बनेंगे, और टोटल अगले 8 या 10 वर्षों में 1100 इंजन ऐसे और बनेंगे। तो इस लिहाज से देखें तो ये मेक इन इंडिया का एक शानदार नमूना है जो ये इंजन बनकर तैयार हुआ है। ये एनर्जी एफिशिएंट है, 87% तक एनर्जी की खपत होती है, इसके अंदर LED लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, जिसके कारण इसकी जो क्षमता है वो बहुत ही बेहतर है अभी इस्तेमाल हो रहे इंजन के मुकाबले। पल्लवी,
जी, और ये भी खबरें हैं कि भारत केवल पांचवा ऐसा देश है दुनिया में जिसके पास अब इस तरह की टेक्नोलॉजी है, बल्कि शायद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी इस तरह की ट्रेनें नहीं चलती हैं अभी तक।
हाँ पल्लवी, स्वीडन, जर्मनी और दो ऐसे देश हैं जिसके पास ये तकनीक है, और इस लिहाज से एक बड़े लीग में भारत शामिल हो रहा है। और पिछले अगर कुछ वर्षों में देखें, पिछले 2 वर्षों में खास तौर पे, तो चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो या रेलवे की टेक्नोलॉजी हो, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हो, भारत ने तकनीकी तौर पे दक्षता हासिल करने पर जोर दिया है और स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश की है, ताकि आने वाला जो जनरेशन है वो उसको और इनहेंस कर सके और विकसित कर सके और हम खुद अपनी तकनीक इजाद कर सके। तो उस लिहाज से ये मेक इन इंडिया के तहत जो एल्स्टॉम ने टेक्नोलॉजी हमें दी है, ये आने वाले समय में या आने वाली जो पीढ़ी है रेलवे इंजीनियरों के लिए, उनके लिए भी बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। पल्लवी,
अच्छा आलोक, ये बताए कि क्या ये कार्यान्वित हो गए हैं ये इंजन, क्या इनको जल्दी इस्तेमाल किया जाएगा या अभी थोड़ा समय है कि ये ऑपरेशनल होंगे?
नहीं पल्लवी, इसकी इसका जो ट्रायल है वो ऑलरेडी पहले से चल रहा था, इंजन का इसको फॉर्मली मोदी ने फ्लैग ऑफ किया है, यानी अब ये रोल आउट होने के लिए तैयार है। तो जिस भी रेलवे ट्रैक पे या जिस सेक्शन पे रेलवे के दो खंडों के बीच इसे चलाया जाना है उसकी पहचान की जाएगी और ट्रैक को जांचा जाएगा कि ये इंजन जब इस पर सरपट दौड़ेगी तो उसे उसके लायक वो रेल खंड है कि नहीं, वो एक मामूली साधारण या कहें औपचारिक जांच होती है जो करेंगे, और उसके बाद ये इंजन अब कभी भी इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। अगर आज फैसला कर ले रेलवे कि हमें इस सेक्शन से इस सेक्शन तक चलाना है तो आज भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, ये बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, बनकर तैयार है इस्तेमाल होने के लिए। पल्लवी,
एक आखिरी सवाल आपसे आलोक, कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है भारतीय रेल के लिए, क्योंकि भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी रेल सेवाओं में से एक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां बात आती है उसमें ऐसा माना जाता है कि वो थोड़े पीछे चल रही है अभी भी, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है भारतीय रेल के लिए?
हाँ बिल्कुल पल्लवी, स्पीड जो भारतीय रेल की रही है उसकी अगर हम उसको देखें तो बहुत ही खस्ता हाल हमारा रेलवे का ढांचा है। हमारा जो फोकस रहा पूरे पिछले आजादी के बाद 70 वर्षों में वो भीड़ को ढोने पर रहा, तो इस लिहाज से हालांकि वेलफेयर स्टेट होने के नाते भीड़ को ढोना यानी लोगों को एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता रही रेलवे की, लेकिन कहीं न कहीं इसको सुनिश्चित करने में जो तकनीकी विकास है तकनीकी उन्नयन है वो पीछे छूट गया। लेकिन अब ये सरकार कोशिश कर रही है कि नहीं, अगर हमें सिर्फ सर्विस ही नहीं करनी है, सर्विस को बेहतर भी बनाना है। तो आप देखें तो अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन, उसके बाद स्पीड बढ़ाने की जो कोशिश की गई हम सफर एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, तो उस दिशा में ही एक ये नई कड़ी जुड़ गई है जिससे हमारे रेलवे की स्पीड बढ़ेगी। जो पिछले 70 सालों में लगभग एवरेज निकालें तो 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की ही रफ्तार रही है। तो दुर्भाग्य है देश का कि आप स्पीड में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सके। अब हो सकता है कि इस तकनीक से और आने वाले समय में और देशों से जो तकनीकें आएंगी उससे हमारा स्पीड बढ़ेगा, और इस लिहाज से देखें तो ये एल्स्ट्रॉम ने जो तकनीकी हस्तांतरण किया है ये उपयोगी साबित होगा। पल्लवी,
आलोक जी, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।